समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कहते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी सुबह से होनी चाहिए, और सुबह सुबह अगर याद उन जवानों को किया जाए जिन्होंने देश प्रेम के खातिर अपनी जान न्योछावर कर दी, तो यकीनन उन जवानों को दिल से श्रद्धांजलि दी जा सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जिस तरह देश के वीरों ने अपना योगदान आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए दिया, वो वाकई सराहनीय है। वीरों ने आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। ऐसे ही शूरवीरों के लिए कहा गया है, वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। और इसी हौसले के साथ स्वीकार कीजिए मेरा यानी फरहत नास का नमस्कार, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you our daily news magazine, Aaj Savere, wherein we give you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 14th of May. We begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi has given a strong message that India is capable of attacking the terrorist hideouts with precision. On the success of Operation Sindoor, Mr. Modi said, under the operation, not only the terrorist camps were destroyed, but their nefarious designs and audacity were also defeated.
जी अनिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो है वो 9 आतंकवादियों शिविरों को जो है वो नष्ट कर दिया गया इससे, और 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया गया। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना पर ये आतंकवादी निर्भर थे उसे भारतीय सशस्त्र बलों ने हराया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंक के आकाओं को अब यह एहसास हो गया है कि निर्दोष लोगों का खून बहाने का जो नतीजा है वो केवल तबाही और पूरी तरह से विनाश ही होगा। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्य कुशलता की भी सराहना की।
पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी।
द प्राइम मिनिस्टर सेड, भारत माता की जय इज द रिजॉल्व ऑफ एवरी सोल्जर हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। ही सेड इट इज द वॉइस ऑफ एवरी सिटीजन हु वांट्स टू लिव फॉर द कंट्री एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और सिर्फ 20 से 25 मिनट के भीतर सीमा पार के ठिकानों पर हमला करके ये दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक से लैस एक पेशेवर बल ऐसा भी कर सकता है।
द प्राइम मिनिस्टर सैल्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेस, द मिलिट्री, द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द साइंटिस्ट। He dedicated the valor, bravery and courage of armed forces under the operation to every mother, sister and daughter of the country. An 11-day nationwide outreach campaign on Operation Sindoor has been launched, largely known as Tiranga Yatra. The campaign aims to highlight the Indian armed forces' success against Pakistan.
और इसके अलावा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के सम्मान में कल तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल गोवा में परवारी विद्या प्रबोधि हाईस्कूल से शिवाजी चौक तक तिरंगा रैली और सिंदूर यात्रा आयोजित की। इसमें पाकिस्तानी आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सराहना की गई।
डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ब्रीफ द फॉरेन सर्विस अटैशेज ऑफ 70 नेशंस ऑन द सक्सेसफुल कॉन्डक्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ही हाईलाइटेड दैट कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रेंथ एंड नेशनल रिजॉल्व थ्रू मिलिट्री सुपीरियोरिटी इन द न्यू एज वॉरफेयर। लेफ्टिनेंट जनरल राणा इलेबोरेटेड द डिटेल्ड प्लानिंग प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स विद कन्फर्म्ड टेरर लिंकेजेस।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कल देशभर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में उन्होंने लोगों को अवगत कराया। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में समाज के प्रमुख सदस्य, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
Many citizens across the country shared their views on the country's counter-terror operation, reasoning why this was a step in right direction. Vasudev, a temple priest in Odisha, said that the Indian Army under the leadership of PM Modi has broken the back of Pakistan Army and its government. If they don't mend their ways, they will be given a bigger punishment. He said that Operation Sindoor has shown the world that our forces can hit the terrorists inside their bases. May the blessings of Lord Jagannath remain on PM Modi, and he should take on the country's enemies like a tiger, he added. Anirbhar Chattopadhyay, a resident of Kolkata, said there can't be a more ugly incident than the Pahalgam massacre. They were murdered in cold blood by Pakistan-sponsored terrorists. This should have been done earlier. A Delhi-based resident said that the Modi government is taking the fight against terror in the right direction. There can't be any other substitute than hitting terror bases in their dens. Forces are in high spirits after Operation Sindoor. Our whole family, including our children, are happy over stern action against Pak-based terrorists, he said. He also added that India is a powerful country and the Operation Sindoor is a right tribute to the victims of Pahalgam brutality.
और अनिता, इसके अलावा भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को अनधिकृत गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस कर्मचारी से 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग को कल इस बारे में आपत्ति पत्र भी जारी किया गया। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जम्मू के आरएसपुरा में पाकिस्तानी गोलीबारी में प्राण उत्सर्ग करने वाले सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। तो अनीता, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से फैसले लिए गए वो वाकई में सराहनीय है, ताकि जो आतंकवादी गतिविधियों को वो जड़ से खत्म कर दिया जाए और आगे जो है वो इस चीजों से बचा जा सके।
Absolutely.
और बिल्कुल, और हम जो वतन को बचाने के लिए जो हमारे शौर्यवीर हैं वो लगे हुए हैं, उनके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि लिए देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये जज्बा है हर देशभक्त का, ये इरादा है हर वीर का।
Moving on, Union Minister of State and PMO Dr. Jitendra Singh has announced construction of 600 new bunkers for border residents of Hiranagar sector in Jammu and Kashmir. Speaking to media persons, he said that 2,000 individual bunkers and community bunkers are already constructed for the safety of border residents.
हिंदुस्तान में पहला ऐसा जिला कठुआ का जहां बंकर निर्माण का प्रयोग किया गया। 2000 बंकर बन चुके हैं। आज ही घोषणा की गई कि 600 और बंकर बनाए जाएंगे, फैमिली बंकर, और लोगों को परखने का मौका भी इन्हीं चार दिनों में मिला। उन्होंने इनकार कर दिया जब उनके प्रशासन ने कहा कि हम आपके लिए कोई और विकल्पित स्थान ढूंढते हैं। उनका नहीं, यहां हमें बड़ी सुविधा भी है और यहां हमें सुरक्षित भी है। एक तरह के वन रूम अपार्टमेंट तरह के वो फैमिली बंकर हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नोएडा और बेंगलुरु में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। नए केंद्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये केंद्र अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए भारत में पहले केंद्र होंगे। इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत मजबूती से स्थापित होगा। श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में व्यापक सेमीकंडक्टर प्रणाली स्थापित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार उन्नत 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने की क्षमता इस केंद्र की प्रमुख विशेषता है।
टुडे वी स्टार्टेड द न्यू सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर ऑफ रेनेसास। द की पॉइंट अबाउट दिस सेंटर इज फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री 3 नैनोमीटर चिप्स विच आर मोस्ट एडवांस्ड विल बी डिजाइंड हियर इन इंडिया एंड टू एंड।
Indian defence stocks surged up to 9% in yesterday's trade session after Prime Minister Narendra Modi's push for made in India defence equipments during his first address to the nation after Operation Sindoor on Monday. The share price of Bharat Dynamics surged the highest among the defence stock, jumping 9.4% to 1,000. 718 rupees on the National Stock Exchange. Hindustan Aeronautics share price gained 4.6%. On the other hand, in comparison to stellar run by Indian defense shares over the past few sessions, Chinese defense stocks plunged over 9% yesterday.
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी. न्यायमूर्ति बीआर गवई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से तपेदिक की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सक्रिय जन भागीदारी से पिछले कुछ वर्षों में इस अभियान ने अच्छी गति पकड़ी है. श्री मोदी ने यह भी कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
US President Donald Trump and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman signed a wide-ranging strategic economic partnership agreement in Jeddah yesterday. The deal covers multiple sectors, including huge arms deal worth nearly $142 billion. Agreements also include significant Saudi investments in artificial intelligence, energy production and healthcare. President Trump began a four-day tour to the Middle East, starting with a visit to Saudi Arabia yesterday. Trump also reaffirmed his commitment to expanding the Abraham Accords, an initiative he launched during his first term to normalize diplomatic relations between Israel and several Arab countries. The US president also announced the lifting of sanctions on Syria that were imposed during the rule of ousted President Bashar al-Assad.
और अनीता, प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की कल फ्रेंच रिवेरा में भव्य शुरुआत हुई. 12 दिन के 78वें कान फिल्म समारोह में विश्व के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, सितारे और सिने प्रेमियों को साथ आने का अवसर मिलेगा. उद्घाटन समारोह में नामी अमरीकी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रॉबर्ट डी नीरो को मानद पाम डियोर सम्मान दिया गया. फिल्म टैक्सी ड्राइवर के इस महोत्सव का शीर्ष पुरस्कार जीतने के 50 साल बाद डी नीरो को ये सम्मान मिला है. इसके अलावा समारोह की शुरुआत एमिली बुनन की फिल्म लीव वनडे के प्रीमियर के साथ हुई. कान फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल के सदस्य रेड कार्पेट पर अपने खास अंदाज में नजर आए. और इसके अलावा भारत जो है वो वैश्विक सिनेमाई मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुका है. निर्णायक मंडल की सदस्य और फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया कान 25 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. कान फिल्म समारोह में महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्य दिन रात्रि क्लासिक सेक्शन में दिखाई जाएगी. सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर ने भी इस फिल्म में अभिनय किया है. कान 2025 में निर्देशक नीरज घायवान की दूसरी फीचर फिल्म होम बाउंड को अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए चुना गया है. भारतीय अभिनेता अनुपम खेर फिल्म तन्वी द ग्रेट के साथ निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और अब वक्त है अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का और रुक करने का महानगरों की खबरों का.
द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज अ टू डे रेजिडेंशियल प्रोग्राम फॉर बीआईएस इम्पैनल्ड रिसोर्स पर्सनल ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ लेसन प्लान्स अंडर लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इन चेन्नई. द बीआईएस हैज ऑलरेडी launched Learning Science via Standards, a unique initiative for students for learning science via standards. This initiative focuses on a series of lesson plans aimed to use scientific concepts, principles and laws to help students understand their practical applications in manufacturing, functioning and testing of quality characteristics of different products as stated in the relevant Indian standards. The subjects for the lesson plans are all largely related to products used in everyday life and have been chosen based on their relevance to education as part of their course curriculum as well as to industrial applications. The lesson plans would also serve as a means for the students of schools and colleges to appreciate the significance of quality and standards and empower them to boldly face the real life situations in any of their future endeavors. The two-day residential training program with around 100 resource persons from 8 branch offices will have lesson plans on pasteurized milk, domestic gas stove, helmet, football, pressure cooker, tire, geotextiles and milk powder developed under the Learning Science via Standards initiative. These 8 lesson plans will be discussed in detail, including various activities and quizzes for the resource persons. The Brihat Bengaluru Mahanagar Palika Chief Commissioner M. Maheshwar Rao has instructed officials to clear encroachment of footpaths in Bengaluru. He issued the instructions after inspecting the pathways between Bommanahalli metro station and Hongasandra metro station in the city. He expressed displeasure at shops and vendors occupying footpaths. He asked the officials to act against such elements and impose fines. Maheshwar Rao also pointed at waterlogging on pathways and asked the municipal workers to clear them and prevent water puddles where mosquitoes lay larvae. He said that grass and weeds growing on footpaths should be cleared immediately and cleaned of dirt and dust. On roads too, he directed the officials to prevent waterlogging. He further added that trees should not be bound by cement and concrete and water should be allowed to percolate into the ground. At Vijayalakshmi Timbers, he issued directions to clear unauthorized posters and handbills pasted on walls and transformers. He also ordered to issue notices to those responsible for parking JCB and other vehicles on the wrong side of the road, obstructing pedestrian movement. Miss World contestants from over 100 countries visited the historic Charminar in Hyderabad last evening and took a heritage walk through Lad Bazaar. Some contestants danced to the traditional Arabic marfa beats that welcomed them. After a short photo session, they went inside the Charminar where tour guides explained to them about its history and importance. Later, the contestants walked through the Lad Bazaar, stopping to shop for bangles, pearls and handmade jewellery. A few contestants watched how bangles were made and praised the local artisans. Amid high security arrangements, the Lad Bazaar was decorated with colourful lanterns. The contestants then went to Chaumahalla Palace, where they were welcomed with a show of culture of the old city. The contestants watched a video about Charminar, the palace and other historic places in Hyderabad. They also visited a photo exhibition and saw items used by royal family. A grand diner was hosted by the palace, Chief Minister Rivant Reddy with his family and ministers Jupali Krishna Rao and Poonam Prabhakar joined the dinner with the contestants along with senior officials and celebrities. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Farhat.
धन्यवाद अनीता. सबसे पहले राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरों से शुरुआत कर लेते हैं. दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधी दस्ते ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दो आरोपियों को करीब 28 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच अभी जारी है. वहीं राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लेडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन विभाग में हीट स्ट्रोक यूनिट तैयार की गई है. इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये सुविधा शुरू की गई थी. बर्फ बनाने वाली मशीन से प्रतिदिन 300 किलो से अधिक बर्फ तैयार की जा सकती है जो इलाज में उपयोग की जाएगी. हीट स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला जाता है. और अब महाराष्ट्र की ओर रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सड़क पर रहने वाले बच्चों को परामर्श और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करके पुनर्वास करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीमों के साथ मोबाइल वैन शुरू करेगी. 6 जिलों में मिशन वात्सल्य के तहत एक पायलट परियोजना की सफलता को देखते हुए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति के राज्यव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी. महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अदिति टटकरे ने कहा कि मोबाइल स्क्वाड पहल सड़क पर रहने वाले बच्चों और उनके माता पिता को परामर्श प्रदान करेगी, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाएगी और अनाथ और एकल अभिभावक बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती कराएगी. तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है अनीता, जहां कहते भी हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सबके लिए समान होना चाहिए. और अगर ऐसी शुरुआत जो है सरकार कर रही है कि वहां पर जो स्ट्रीट जो जहां पर रहते हैं बच्चे उनके लिए जो है वो इस तरह की योजना जो है काफी लाभ सिद्ध होगी. और अब कोलकाता की ओर रुख कर लेते हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर में नाबान स्थित कैबिनेट सचिवालय में 72वीं कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगी. इस बैठक में कैबिनेट के विभिन्न मंत्री मौजूद रहेंगे. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है. महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का रुख कर लेते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कोलकाता में बादल छाये रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and the maximum will be around 40 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
और अनिता, अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज ही के दिन सन 2010 में भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, व्यापार और निवेश आदि में 22 समझौते हुए।
In going back a little, in the year 1956, government announces that decibel coinage will be introduced in India from 1st of April. In 1960, the first plane of India flew up to New York. In the year 1982, All India Radio renamed as Akashwani, but its Urdu service yet announces this as All India Radio. In 1992, LTTE banned in India, and in the year 1994, it was banned for the second time under the Unlawful Activities Prevention Act, 1967. In the year 1994, RBI announces tight monetary policy. And in the year 2000, L.K. Advani, Union Home Minister, announced the extension of the ban on the LTTE by 2 more years.
1973 में आज ही के दिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के समान अधिकार को मंजूरी दी। वहीं 1999 में सदी का आखिरी विश्व कप क्रिकेट की लॉर्ड्स इंग्लैंड में शुरू हुआ। और 1981 की अगर बात की जाए तो नासा ने स्पेस व्हीकल S-192 लॉन्च किया आज ही के दिन। इसके अलावा 1811 में आज ही के दिन पराग्वे स्पेन की पराधीनता से मुक्त हुआ था। और अब बढ़ते हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर और याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। तो अनिता, सबसे पहले हम किन्हें याद कर रहे हैं?
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संभाजी भोसले। ही वाज आल्सो नोन एज शंभूजी राजे। ही रूल्ड बिटवीन 1681 टू 1689 एज द सेकेंड किंग छत्रपति ऑफ द मराठा एम्पायर, अ प्रोमिनेंट स्टेट इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। At the age of 9, Sambhaji was taken as a political hostage by the Mughal Empire to guarantee his father's compliance with the Treaty of Purandar. He later accompanied his father to Agra, where both were placed under the house arrest by the Mughal Emperor Aurangzeb. They subsequently, of course, escaped. He ascended the throne following his father's death, with his rule being largely shaped by the ongoing wars between the Marathas and the Mughal Empire, as well as other neighboring powers such as Siddhi of Janzira, Wadiyars of Mysore, and Portuguese Empire in Goa. As a ruler, Sambhaji implemented drought relief measures and encouraged agricultural development while continuing his father's administrative systems. He was also a scholar who authored several works in Sanskrit and Hindustani, including the political treatise Bandhu Bhushanam. His torture and death at the hands of the Mughal Empire elevated him to the status of a martyr. He remains popular in modern India and also among the Hindu nationalists.
और अनिता, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक मृणाल सेन का। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। मृणाल सेन हिंदी फिल्मों में भी समान रूप से सक्रिय रहे। इनकी पहली हिंदी फिल्म 1969 की कम बजट वाली फिल्म भुवन शोम थी। फिल्म एक आरडीएल रईस जादे की पिछड़ी हुई ग्रामीण महिला द्वारा सुधार की हास्य कथा पर आधारित थी। साथ ही ये फिल्म वर्ग संघर्ष और सामाजिक बाधाओं की कहानी भी प्रस्तुत करती है। फिल्म की संकीर्णता से परे नए स्टाइल का दृश्य चयन और संपादन भारत में समानांतर सिनेमा के उद्भव पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। मृणाल सेन को भारत सरकार द्वारा 1981 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया।
Regarded as one of the finest Indian filmmakers along with his contemporaries like Satyajit Ray, Ritwik Ghatak and Tapan Sinha, Sen played a major role in India's parallel cinema, which offered a realistic socially aware counterpoint to the splashy Bollywood films, as well as in the country's new wave cinema. I'm playing a snippet of music from his film Mriga, released in 1980.
और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर की। टेलीविजन उन्हीं के जमाने में वर्ष 1949 में शुरू हुआ। हिंदी और भारतीय भाषाओं के तमाम बड़े लेखकों को रेडियो में वो लेकर आए। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर रामधारी सिंह दिनकर और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे दिग्गज साहित्यकारों के साथ उन्होंने हिंदी के माध्यम से सांस्कृतिक जागरण का सूचना संचार तंत्र विकसित और स्थापित किया। 1930 ईस्वी में तीन छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद रूपाब पत्रिकाओं में न केवल छपे बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भाग लिया। भोर का तारा में संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई। ये नाम प्रतीक रूप में शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से जगदीश चंद्र माथुर के रचनात्मक व्यक्तित्व के भोर का तारा ही है। इसके बाद उनकी रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई देखने को मिलती गई। व्यक्तियों घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत में टेलीविजन शुरू होने जा रहा था तब माथुर साहब ने टीवी का नाम दूरदर्शन रखा।
टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ऑटर नोसान क्लैम्पेरर, द जर्मन कंडक्टर कंपोजर ओरिजिनली बेस्ड इन जर्मनी एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स हंगरी एंड फाइनली इन ग्रेट ब्रिटेन। He began his career as an opera conductor, but was later better known as conductor of symphonic music. A protege of the composer and conductor Gustav Mahler from 1907, Klemperer was appointed to a succession of increasingly senior conductorships in the opera houses in and around Germany. Between 1929 and 1931, he was the director of Kroll Opera in Berlin. I'm playing a snippet from Mozart's Giovanni, actually conducted by Otto Klemperer. In 1934, he was appointed chief conductor of the Los Angeles Philharmonic and guest conducted other American orchestras, including the San Francisco Symphony, the New York Philharmonic, and later Pittsburgh Symphony, which he reorganized as a permanent ensemble. He served as a musical director of the Hungarian State Opera in Budapest from 1947 to 1950.
और आज महान भाषाविद, प्रख्यात विद्वान, राजनीतिक नेता और भारतीय धरोहर के मनीषी आचार्य रघुवीर की पुण्यतिथि है। वे महान कोशकार, शब्दशास्त्री और भारतीय संस्कृति के उन्नायक थे। एक और आचार्य रघुवीर ने कोशों की रचना कर राष्ट्रभाषा हिंदी का शब्द भंडार संपन्न किया, तो दूसरी ओर विश्व में, विशेषतः एशिया में फैली हुई भारतीय संस्कृति की खोज कर उसका संग्रह और संरक्षण किया। आधुनिक युग में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें बड़ी निर्ममता से दिया गया है। इन नामों में वैद्य गुरुदत्त, आचार्य रघुवीर, पंडित सूर्य नारायण व्यास और डॉक्टर हरवंश लाल ओब्राय का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।
एंड टुडे इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिडनी जोसेफ बेशे, बोर्न ऑन दिस इन 1897, वाज द अमेरिकन जैज सैक्सोफोनिस्ट, क्लैरिनेटिस्ट एंड कंपोजर। He was one of the first important soloists in jazz and first recorded several months before trumpeter Louis Armstrong. While working with Louis Armstrong, Beshe was one of the first musicians to develop the swing style of jazz. He influenced the widening difference between jazz and ragtime. Beshe liked to have his sound dominate in a performance, and trumpeters reportedly found it difficult to play alongside him. I'm playing a snippet from Summertime, performed by him.
Oh. और अंत में चलते चलते बस हम इतना कहना चाहेंगे कि लिए देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये जज्बा है हर देशभक्त का, ये इरादा है हर वीर का, वतन की मोहब्बत में जुनून की हदें पार करना, और ऐसा ही व्यक्तित्व होता है हमारे शूरवीरों का।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.